हवेली में रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन अंधेरा कहीं ठहर नहीं पाया था। हर तरफ रोशनी थी। वार्म लाइट्स की लड़ियां आंगन के चारों ओर ऐसे लिपटी थीं जैसे हवेली ने गहने पहन लिए हों। फेरी लाइट्स हवा के हल्के झोंकों के साथ थरथरा रही थीं। फूलों की खुशबू, गुलाब, मोगरा, रजनीगंधा, सब मिलकर माहौल को भारी नहीं बल्कि अपनापन दे रही थीं। डाइनिंग एरिया में मेहमानों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हंसी, बातचीत, चम्मचों की हल्की खनक, सब कुछ किसी पुराने पारिवारिक एल्बम के पन्नों जैसा लग रहा था। रत्ना देवी सोफे के बीचों बीच बैठी थीं। ग्रीन रंग की साड़ी, हल्की सुनहरी बॉर्डर, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर ऐसी चमक जो दवाइयों या आराम से नहीं बल्कि बेटे के ठीक हो जाने की राहत से आई थी। उनके पास बैठी महिलाएं, कोई दूर की रिश्तेदार, कोई पुरानी जान पहचान वाली, सब उनके चारों ओर सिमटी हुई थीं। भगवान की कृपा है, रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा ठीक है, आज मुझे सच में बहुत खुशी है। उनकी आवाज में थकान नहीं थी, बस संतोष था। अरे रत्ना, एक महिला बोली, शायद ताई या चाची, भारी गहनों से सजी, आंखों में पुरानी शरारत चमकती हुई, खुशी तो होगी ही, पर ये बताइए, हमारा हैंडसम हीरो विशु कहाँ है? उनकी बात सुनकर पास बैठी दो तीन औरतें हंस पड़ी। हाँ हाँ, किसी ने जोड़ा, पूरा घर सजा दिया है और जन्मदिन वाला राजा अभी तक दिखा ही नहीं। रत्ना देवी हंसी, वो हंसी जिसमें माँ होने का गर्व साफ छलक रहा था। आ जाएगा, उन्होंने कहा, उसे इन सब बातों में ज़रा देर लग जाती है। उसी वक्त शकुंतला पास आकर रुकी, साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई, चेहरे पर हमेशा की तरह संयम और अपनापन। भैया अभी आते ही होंगे, उन्होंने ताई की तरफ देखते हुए कहा, तब तक ताई जी आप कुछ खा लीजिए, इतनी देर से बैठी हैं। अरे वाह, ताई ने आंखें मटकाते हुए कहा, शकुंतला तू तो अब भी वैसी है, सबका ध्यान रखने वाली। शकुंतला हल्का सा मुस्कुरा दी, वो जानती थी इन बातों का जवाब ज्यादा देना जरूरी नहीं। तभी बातों का रुख अपने आप बदल गया। वैसे चाची ने प्लेट रखते हुए कहा, तुम लोगों को याद है विशु बचपन में कितना शैतान था? रत्ना देवी ने सिर झुकाया, जैसे कोई पुरानी शरारत अचानक आंखों के सामने आ गई हो। अरे मत पूछो, उन्होंने कहा, नाक में दम कर देता था। दम? ताई ने ठहाका लगाया, पूरी हवेली सिर पर उठा लेता था। सच में, एक और महिला बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार तो वो कुएं में झांकने के चक्कर में आधा अंदर गिर ही गया था। और याद है, चाची ने बात पकड़ी, स्कूल से शिकायत आई थी कि मास्टर जी की कुर्सी पर स्याही लगा दी थी। सब जोर से हंस पड़े। वो तो बस शुरुआत थी, रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार तो इसने आरती के थार में पटाखा रख दिया था। क्या? शकुंतला की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। हाँ, रत्ना देवी हंसी, पूरी पूजा में धुआं ही धुआं हो गया था और ये कोने में खड़ा ऐसे मासूम चेहरे से देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त शामली पास से गुजर रही थी, हाथ में ट्रे थी, मेहमानों के लिए ड्रिंक्स ले जा रही थी। चाची की नज़र उस पर पड़ी। अरे, उन्होंने आवाज़ लगाई, नई बहू जरा इधर आओ। शामली एक पल को रुकी, फिर ट्रे पास रखकर उनके पास चली आई। हाँ चाची जी। नहीं नहीं, चाची ने प्यास से कहा, ऐसे नहीं, बैठो यहाँ, अपने पति की बचपन की कहानियाँ तो सुनो। शामली थोड़ी झिझकी, फिर शकुंतला ने आंखों से इशारा किया बैठ जाने का, वो पास में बैठ गई। तो सुनो बहू, ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता होगा तुम्हारा पति बड़ा सख्त है, कम बोलने वाला है। शामली ने हल्के से सिर हिलाया, पर सच ये है, चाची बोली, ये बचपन में पूरा उधम मचाता था। एक बार, रत्ना देवी ने याद करते हुए कहा, इसने पूरे घर के जूते छत पर छिपा दिए थे। और फिर, शामली ने अनायास पूछ लिया, और फिर क्या? ताई हंसी, पूरी हवेली में हंगामा, सब जूते ढूंढते रहे और ये आराम से बैठकर आम खा रहा था। सब फिर हंस पड़े। शामली चुपचाप सुन रही थी, उसके लिए ये सब किसी और दुनिया की बातें थीं। जिस आदमी को वो रोज सख्त चेहरे, कम शब्दों और गहरी आंखों में देखती थी, वो कभी ऐसा शैतान बच्चा भी रहा होगा, ये सोचना उसे अजीब लग रहा था। एक बार, चाची ने और जोड़ा, इसने अपने पापा की फाइलें पानी में भिगो दी थीं। क्यों? शामली के मुंह से निकल गया। बस ऐसे ही, रत्ना देवी ने कहा, कहता था देखना चाहता था कागज तैरते हैं या नहीं। शामली के होंठों पर अनायास एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार अपने पति की एक अलग तस्वीर देखी, बिना डर, बिना सख्ती, बस एक नटखट बच्चा। अब देखो, ताई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज वही लड़का पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए खड़ा है। वक्त बहुत कुछ बदल देता है, शकुंतला ने धीरे से कहा। शामली ने सिर झुकाया, उसके अंदर कुछ धीरे धीरे पिघल रहा था। वो आदमी जो उसे कभी कभी दूर और समझ से बाहर लगता था, उसके पीछे इतनी हंसी, इतनी शरारतें, इतनी कहानियां थीं। तभी दूर से मेहमानों की हलचल बढ़ी। आ गए, आ गए, किसी ने कहा। सबकी नजरें एक साथ मुख्य दरवाजे की तरफ उठ गईं और शामली के दिल में पहली बार सिर्फ डर या दूरी नहीं बल्कि जिज्ञासा ने जगह बना ली। मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ती हलचल धीरे धीरे साफ होने लगी। आर्यन अंदर आया, वही सधा हुआ कदम, वही शांत लेकिन असरदार मौजूदगी। हल्के रंग की शर्ट अब आंगन की रोशनी में और निखर रही थी। कंधे सीधे, नजर चौकन्नी, जैसे हर मेहमान, हर कोना उसकी जिम्मेदारी हो। उसके आते ही महिलाओं के बीच हलचल बदल गई। अरे, आ गया हमारा आयोजक, मोहल्ले की आंटी जो हर बात पर राय देने में माहिर थी जरा ऊंची आवाज में बोली। वाह आर्यन, वो आगे बढ़ते हुए बोली, इस बार तो इंतजाम कमाल का है। सच में, एक और आंटी ने हामी भरी। लाइटिंग देखो, फूलों का सिलेक्शन, सब कुछ बड़ा सलीके से, पूरी हवेली अलग ही चमक रही है, किसी ने कहा। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। आप लोगों को अच्छा लगा, बस यही काफी है, उसकी आवाज विनम्र थी, बिल्कुल बिना दिखावे के। अरे अरे, मोहल्ले वाली आंटी ने हाथ नचाया, इतनी सादगी मत दिखाओ, साफ साफ मानो, सब कुछ तुमने ही देखा है ना। हाँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, आंटी हंसी, पूरा घर सिर पर उठाकर घूम रहे थे तुम तो। पास बैठी औरतों को अब नया विषय मिल गया था। वैसे आर्यन, एक चाची ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, इतना सब संभाल लेते हो, कॉलेज, घर, रिश्ते, शादी कब कर रहे हो? आर्यन की मुस्कान एक पल को ठिठकी। चाची, वो कुछ कहने ही वाला था कि, अरे छोड़ो, दूसरी आंटी ने बात काट दी। हाँ भाई, तीसरी बोली, इतना हैंडसम लड़का, इतना सलीकेदार, किसी को तो हक मिलना चाहिए। सब हंस पड़ी। आर्यन ने हल्का सा गला साफ किया। अभी, उसने शब्द चुने, अभी थोड़ा वक्त है। वक्त? मोहल्ले वाली आंटी ने आंखें तरेरी। आजकल के लड़कों के पास हर चीज का वक्त होता है, बस शादी का नहीं। सब फिर हंस पड़े। और वो तुम्हारी मंगेतर? किसी ने शरारत से पूछा। आर्यन ने नजर उठाई। कौन? उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। अरे वही, आंटी ने आंख मारी, जिसके बारे में खबरें उड़ती रहती हैं। कॉलेज वाली? एक औरत ने जोड़ा दूसरी ने। या फिर, मोहल्ले वाली आंटी ने थोड़ा झुककर कहा, दिल वाली? अब आर्यन हंस पड़ा। आप लोग भी ना? उसने सिर हिलाया। आज तो पापा का दिन है। दिन पापा का है, आंटी बोली, पर सवार तुम्हारा है। तो बताओ, चाची ने टोकते हुए कहा, कहाँ है वो लड़की, पार्टी में बुलाया है या नहीं? आर्यन कुछ कहता उससे पहले मुख्य दरवाजे पर एक हल्की सी हलचल हुई। गेट से सफेद कार रुकी। सबकी नजरें अनायास उधर घूम गई। दरवाजा खुला और उसी पल अदिति अंदर आई। हल्के रंग का सूट, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की सी झिझक और आंखों में खोज। उसने एक पल के लिए पूरे आंगन को देखा, रोशनी, मेहमान, हंसी, और फिर उसकी नजर सीधे आर्यन पर टिक गई। और आर्यन, जिसकी पेट अभी तक औरतों की तरफ थी, जैसे किसी एहसास से मुड़ा। उसकी नजर अदिति से टकराई और उस पल सारी आवाजें जैसे धीमी पड़ गईं। सवाल, हंसी, टांग खिंचाई, सब पीछे छूट गया। बस दो नजरें थीं और एक आने वाला मोड़, जिसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी।